हरे कृष्णा, हरि बोल। ये कौन भेजा है? ओके, बाय कृति दास सिंह। थैंक यू कृति, यू रोट इट योर सेल्फ? हाँ, हु रोट इट? यू रोट इट एंड शी साइंड इट। ओके, हरे कृष्ण। तो अर्जुन 12 साल के बाद इंद्रप्रस्थ में लौट आए। इसके बीच क्या हुआ? ये 12 साल के अंदर अर्जुन के उलूपी के साथ अर्जुन का विवाह हुआ और मणिपुर के राजकन्या चित्रांगदा के साथ विवाह हुआ और उसका एक पुत्र भी हुआ था चित्रांगदा के द्वारा, वो था बब्रुवाहन। और इसके पश्चात जब अर्जुन द्वारका में गया तब वहां द्रौपदी को सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। और इसके पश्चात अर्जुन सुभद्रा के लेकर एक साल वहां ठहरा, द्वारका में ठहरा। और द्वारका में ठहरने के पश्चात वहां से अर्जुन वापस आए इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में अर्जुन और सुभद्रा का एक पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था? अभिमन्यु। और इसके पश्चात द्रौपदी को 5 पुत्र मिला पंच पांडव से। 5 पांडव के द्वारा एक एक वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुआ। युधिष्ठिर महाराज के पुत्र का नाम हुआ प्रतिबिंध्या। भीमसेन का पुत्र का नाम हुआ सुतसोम। अर्जुन का पुत्र का नाम हुआ सुतकर्मा। नकुल का पुत्र का नाम हुआ शतानिक। और सहदेव का पुत्र का नाम हुआ श्रुतसेन। तो कुछ दिन के बाद कृष्ण ने आकर जब सब द्वारकावासी जदुवंशी ने वहां आए थे, बल्कि सब चले गए, बल्कि कृष्ण वहां रह गया। तो एक दिन कृष्ण और अर्जुन खांडव वन के पास विराज कर रहे थे। तो एक दिव्य दृष्टि, दिव्य दर्शन, एक ब्राह्मण एक दिन आया, आके उनके पास आकर उनके समक्ष आकर बोला कि मैं बहुभोजी ब्राह्मण हूं, मैं खाना बहुत पसंद करता हूं, तो आप मेरा खाने का बंदोबस्त करेंगे यहां? तो कृष्ण और अर्जुन ने बताया, आप बताइए कौन से भोजन आप करना चाहते हैं। तो तब ब्राह्मण बोला कि मैं अग्निदेव हूं और मैं ये खांडव बन खाना चाहता हूं। तो कृष्ण ने पूछा, आप खांडव बन खाना चाहते हैं, ये मुश्किल क्या है? और खाना आप क्यों, ये बन क्यों आप खाना चाहते हैं? तब अग्निदेव ने बताया कि श्वेतकी नाम का एक राजा बहुत सालों तक यज्ञ किए थे और उस यज्ञ में ये यज्ञ इतना विशाल था, इतना महान था, और उस यज्ञ में साल भर 12 साल भर घी डालते रहे। तो उतना घी खाकर मेरा अग्निमंद हो गया, अग्निदेव का अग्निमंद रोग हो गया। जब मतलब जो हजम का जब शक्ति कम जाता है, हजम किसके द्वारा होता है? अग्नि के द्वारा। तो अग्निमंद, मंद का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। तो अग्निदेव का अग्निमंद हो गया और इसलिए अग्निदेव बहुत रुग्ण हो गए अजीर्ण के कारण। उनका अंग अंग ढीला पड़ गया, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, प्रार्थना की, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाए और तुम्हारी ग्लानी भी मिट जाएगी। तो वहां इसके पश्चात, ब्रह्मा जी के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात, अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन जलाने का प्रयत्न किया। बल्कि जब ही उन्होंने खांडव वन जलाने का प्रयास किया, अग्निदेव आग के द्वारा सब जला सकते हैं, बल्कि जब ही उन्होंने ये जलाने का खांडव वन जलाने का प्रयास किया, तभी इंद्र ने वहां आकर बारिश डालना शुरू कर दिया और उनका वन अग्नि निभ जाता था। तो कृष्ण ने पूछा, क्यों इंद्र क्यों ऐसा कर रहे हैं खांडव को? तुम जब खांडव जलाते रहे थे वो, तो इंद्र ने बाधा क्यों डाल रहा है? तो अग्निदेव ने बताया कि इंद्र का मित्र तक्षक इस खांडव वन में रहता है और उसका मित्र के कारण इंद्र ने ये वन जलने में बाधा डाल रहा है। तो मैं, आप महावीर, आप दो वीर श्रेष्ठ हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे सहयोग दीजिए ताकि इंद्र जब ये खांडव वन जलाने का निभाने का कोशिश करेगा तो आप इंद्र को संभालिए। तो अर्जुन ने बोला, इंद्र को तो मैं संभालूंगा, बल्कि मेरे पास तो आप ना तो कोई अस्त्र है, यद्यपि मेरे पास दिव्य अस्त्र है, बल्कि मेरे बाहु के बराबर, मेरा बाहुबल के बराबर, भुज के बाहु के शक्ति के बराबर मेरे पास कोई धनुष नहीं है और ये धनुष मेरा क्षमता के लायक छोड़ने के लिए यथेष्ट बाण भी नहीं है और इस बाण रखने के और अस्त्र रखकर युद्ध करने के लिए उपयुक्त रथ भी नहीं है। तो आप अगर इसका बंदोबस्त कर सकते हैं तो जरूर हम इंद्र के साथ मुकाबला कर सकते हैं। और कृष्ण के पास भी कोई अस्त्र नहीं है, तो आप अगर इन कृष्ण के लिए चक्र ला सकते हैं तो हम दोनों जरूर आपको सहयोग देंगे। और तब अग्निदेव ने वरुण के पास, वरुण को बुलाया, वरुण देव को, और वरुण देव के पास से गांडीव धनुष और अक्षय तून मांगा। अक्षय मतलब जिसका, जिससे बाण का कभी भी क्षय नहीं होता, हर समय वो तूनीर भरा रहता था। और दिव्य रथ दिया अर्जुन को और कृष्ण के लिए चक्र प्रदान किया। तो इसके बाद अग्निदेव ने जाकर खांडव जलाने का प्रयास किया, तो तब ही इंद्र मुसलधारा से वाणी बरसाने लगा, खुद आकर सारे मेघों के लेकर आया। बल्कि कृष्ण और अर्जुन ने इंद्र को रोक दिया तब सारे देवताओं ने भी आया, बल्कि अर्जुन और कृष्ण सारे देवताओं को भी हरा दिया और अग्निदेव ने बहुत तुष्ट होकर खांडव वन खाने लगा, मतलब खांडव वन जलाने लगा। और जो भी प्राणी वो वन से भागने का कोशिश कर रहा था, कृष्ण और अर्जुन उसको संभाल रहे थे ताकि वो भाग ना पाए, और ऐसे सब आग से जल गए। तो वहां एक उस समय तक्षक नहीं था, बल्कि तक्षक का पुत्र अश्वसेन वहां था। तो वो जब भागने की कोशिश किया, बल्कि अर्जुन का बाण से वो भाग नहीं पाया, तो उसका मां उसको खा लिया, मतलब उसके मुंह से शुरू करके सारा अंग अपना शरीर में ले लिया, खा लिया, ताकि और उसको लेकर भागने का प्रयास किया। बल्कि तब अर्जुन के अपने बाण के द्वारा उस तक्षक की पत्नी का शेर काट दिया, और तो अश्वसेन भी भागने का प्रयास करने की चेष्टा किया, बल्कि तब इंद्र ने आकर क्षण भर के लिए अर्जुन को मोहित कर दिया। और अच्छा, इसका दिवर्णन मैं देख रहा हूं। हाँ, उस समय नागराज तक्षक खांडव वन में नहीं था, वो कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु उसका पुत्र अश्वसेन वही था, और बचने का बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्जुन के बाणों के घेरे से बाहर न जा सका। अश्वसेन की माता ने उसे निगल कर बचाने की कोशिश की, वो मुंह की ओर से शुरू करके पूंछ तक निगल भी रह गई थी, परंतु अग्नि का प्रकोप बढ़ जाने से बीच में ही भागने लगी। अर्जुन ने ऐसा तक्कर निशाना मारा कि उसका फन बिद गया। इंद्र अर्जुन का ये काम देख रहे थे, उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आधी चलाई और बूंदों की बौछार डाली कि अर्जुन क्षण भर के लिए मोहित हो गए, अश्वसेन वहां से निकल भागा। इंद्र की इस धोखे की बात याद करके अर्जुन क्रोध से तिलमिला उठे और पैन पौने तथा तेजो बाणों से आकाश की टक्कर इंद्र से गिर गए। तो ऐसे अश्वसेन बच गए। तो उस समय मैदान जो था असुरों का विश्वकर्मा, वो मैदान भी वहां था। तो दानवों का जो कारीगर, तो वो जब वहां से भागने का कोशिश किया तो कृष्ण और अर्जुन उसको सामना कर किया। तो मैदान अब देखा, पीछे आग और सामने कृष्ण चक्र लेकर खड़े हुए हैं, तो वो अर्जुन को पैर पर गिर गया और अर्जुन के पास प्राण भिक्षा किया। तो ये जब मैदानव ऐसे अर्जुन के पास अर्जुन को शरण ले लिया, तब अर्जुन उसको अभय दिया और कृष्ण भी अपना चक्र को संवरण कर लिया। इसे हम एक ये देखता है, एक शिक्षा मिलता है। महाभारत में भी जो शिक्षा ऐसे सूक्ष्म रूप में दिया गया है, भक्ति का सरल रूप में नहीं, इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है यहां कि भगवान के पास भगवान के शरण लेने से भगवान शरण दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बल्कि भगवान के भक्त का शरण लेने से भगवान अवश्य ही उनको रक्षा करते हैं, कृपा करते हैं। तो और कोई अर्जुन के पास, अर्जुन को शरण नहीं लिया था, सब भागने का कोशिश की, इसलिए कोई भी बचा नहीं। बल्कि जब मैदान अब अर्जुन को शरण ले लिया तो उसके कारण वो बच गया। ये अग्निकांड से केवल छह प्राणी बच सके, अश्वसेन, सर्प, मैदानव और चार शांग पक्षी। शांग पक्षियों का पिता मंदपाल ने और उन पक्षियों में सबसे बड़े जरितारी ने अग्नि देवता की तुष्टि करके अपनी रक्षा का वचन ले लिया था। अग्निदेव की कृपा से ये चार को रक्षा हो गया था। तो तब अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से प्रज्वलित होकर खांडव वन को जला डाला। अनंतर ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं के साथ अंतरिक्ष से वहां उतरे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, आप लोगों ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी असाध्य है। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूं, इसलिए आप मनुष्य के लिए दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी मुझसे मांग सकते हैं। तो इंद्रदेव ने आकर उनको बर देने का इच्छा किया, तुम जो कुछ चाहो मांग लो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आप सब प्रकार के अस्त्र दे दीजिए। क्षत्रिय केवल अस्त्र ही मांग चाहता है, वीर हैं लड़ाई करने के लिए, अस्त्र ही उनका संपदा है। तब इंद्रदेव ने बोला, हाँ जरूर मैं दूंगा, समय आने पर मैं दूंगा। जब देवादिदेव महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, उस समय तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तुम्हें अपने सारे अस्त्र दे दूंगा। मैं जानता हूं कि वो समय कब आएगा। और श्री कृष्ण ने क्या बोला अग्निदेव को, श्री कृष्ण ने अग्निदेव को बोला कि आप मुझे ये वर दीजिए कि मेरी और अर्जुन की मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। तो इसके पश्चात माया दानव ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो अर्जुन ने तब बताया, देखिए आप तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया, तुम जो मेरा सेवा स्वीकार किए हो ये उपकार हुआ है मेरा, और कुछ तुम्हारा कल्याण हो, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हम पर प्रसन्न रहना, अब तुम जा सकते हो। अर्जुन को कुछ चाहना नहीं था, बल्कि मैं दानव ने बहुत विनती करने लगा कि आपके लिए कुछ तो करने का अवसर हमें दीजिए। तो मैं देव दानवों का विश्वकर्मा हूं, प्रधान शिल्पी हूं, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। तब अर्जुन ने बोला, मायासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है, इसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारा अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरा सेवा हो जाए। ये भी एक भक्त का मनोभाव का लक्षण है। भक्त कुछ करने के प्रतिदान स्वरूप कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि भक्त भगवान पर भरोसा करके रहता है और सोचता है भगवान हमें जो कुछ जरूरत होगा भगवान जरूर देंगे, दूसरे के पास मांगने का क्या जरूरत है। तो मायासुर ने, मायदानव ने जब श्री कृष्ण को पूछा तो श्री कृष्ण को उनको बताया, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो, यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उसके लिए एक सभा बना दो। वो सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके, उसमें देवता मनुष्य एवं असुर का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का ये आज्ञा सुनकर मैदानव ने युधिष्ठिर के पास गया और युधिष्ठिर को पूछा और युधिष्ठिर को अनुमति लेकर एक सभा बनाने का आयोजन किया। और उसके पहले मैदानव बताया था कि हिमालय के पर्वत में एक स्थान में जहां दैत्यों के राजा वृषपर्वा बहुत भारी यज्ञ किया था, तो यज्ञ करने के पश्चात बहुत सारे धन रत्न सब वहां रखा गया था, तो ये प्रासाद बनाने के लिए वहां से वो सारे कुछ लाया और साथ साथ वो एक गदा लिया था जो भीमसेन के लिए दिया गया था और एक शंख लिया था जिसका नाम था देवदत्त। तो ये शंख ने वो अर्जुन को भेंट किया था। तो वृषपर्वा ने शत्रुओं को संहार करके वो गदाओं को चोट सहने वाली भारी गदा वहीं रख छोड़ी थी। वो लाखों गदाओं के तुलना में अद्वितीय है, वो आपके गंडीव धनुष के समान है, भीमसेन के यज्ञ है। देवदत्त नामक शंख भी वही है जिसे लाकर मैं आपको भेंट करूंगा। ये कहाकर मैदानव ने ईशान कोण की यात्रा की और वहां पूर्व की बिंदुसर पर पहुंच गए। राजा भगीरथी ने गंगा जी के अवतरण के लिए वही तपस्या की थी। मायासुर ने वहां जाकर सभा बनाने की सारी सामग्री, पूर्वोक्त गदा, देवदत्त शंख और अपरिमित धन अपने अधिकार में कर लिया तथा वहां से लौटकर युधिष्ठिर के लिए विश्वविश्रुत मणि में दिव्य सभा का निर्माण किया। तो ये जब मायासुर ने केवल 14 महीने में इस दीप सभा का निर्माण करके धर्मराज युधिष्ठिर को निवेदन किया। महाराज युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त आने पर 10,000 ब्राह्मणों को फल, कन्दमूल, खीर आदि तरह तरह के पदार्थों को भोजन कराया, उन्हें वस्त्र, पुष्पमाला, छोटी बड़ी सामग्री आदि से तृप्त करके प्रत्येक को 1,000 गौओं को दान किया। तो ऐसे ये सभा का निर्माण हुआ और उस सभा में ये युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य को शासन करने लगा। तब एक दिन वहां नारद मुनि आए, तो नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आप तो बहुत सारा ब्रह्मांड भ्रमण करते हैं और ब्रह्मांड के परे भगवत धाम में भी जाते हैं, तो आप बताइए ऐसा कोई सभा और कहीं है या नहीं। तो नारद ने बोला, अच्छा नारद जी ने तब उनको बताया कि युधिष्ठिर महाराज देखिए कैसे प्रश्न किया था उनको, देवर्षि आप सदा सर्वदा मन के समान पर्यटन करते हैं और ब्रह्मा के बनाए विभिन्न लोकों को दर्शन करते हैं, करते रहते हैं, आपने कहीं ऐसा या इससे अच्छा सभा देखी है, कृपा करके बतलाइए। धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी से कहा, धर्मराज मनुष्य लोक में ऐसी मणिमयी सभा मैंने न देखी है और न तो सुनी है, मैं न तो देखा है और न तो कभी ऐसी सभा के बारे में सुनी है। मैं आपको जमराज वरुण इंद्र कुबेर और ब्रह्मा जी का सभा का वर्णन सुनाता हूं। तो इसके पश्चात नारद मुनि ने जमराज का सभा, वरुण का सभा, इंद्र का सभा, कुबेर एवं ब्रह्मा जी के सभा के बारे में सुनाया उनको। और तब ये वर्णन करते हुए नारद मुनि ने बताया कि जमराज का सभा में उन्होंने पांडु को दर्शन किया था और पांडु ने नारद जी को बोला कि युधिष्ठिर महाराज के कहने के लिए कि युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करे ताकि उसकी पुण्य के प्रभाव से पांडु जमराज के सभा में एक विशेष स्थान प्राप्त हो सके जैसे हरिश्चंद्र ने प्राप्त हुआ था। तो इसके पश्चात इसके पूर्व में नारद मुनि ने हरिश्चंद्र का कहानी वर्णन किया था, तो हम उसमें नहीं अब जा रहा हूं। तो ये नारद मुनि के माध्यम अपना पिता का ये इच्छा सुनकर युधिष्ठिर महाराज और पांडव ने राजस्व यज्ञ करने के लिए बहुत ही उत्साहित हो गए। तब युधिष्ठिर महाराज ने एक दूत को भेजा कृष्ण के पास कृष्ण के अनुमति प्राप्त करने के लिए। इसके पहले युधिष्ठिर महाराज अपने मंत्रियों को पूछा, अपने भाइयों को पूछा, अपने मित्रों को पूछा, गुरुजनों को पूछा कि राजस्व यज्ञ करना उचित होगा या नहीं, तो सब तो उनको ये अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनको आशीर्वाद और मदद देने का संकल्प किया और आश्वासन दिया। और बल्कि युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण के पास दूत भेजा कृष्ण का क्या कहना है वो सुनने के लिए। तो दूत जब जाके कृष्ण को बताया तो कृष्ण स्वयं ही इंद्रप्रस्थ में आ गया। कृष्ण ने सोचा कि युधिष्ठिर महाराज जरूर उससे कुछ ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं जिसके लिए उनके आमने सामने रहना ही सही है। तो कृष्ण ने जब आया तो एक दिन कृष्ण जब आराम कर रहा था दोपहर को, तब युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाकर बोला कि अपना जो अभिलाषा के बारे में, राजस्व यज्ञ करने का अभिलाषा के बारे में और पांडु का इच्छा के बारे में भी बताया। और ये कहते हुए युधिष्ठिर महाराज ने उनको बताया, देखो कृष्ण, ये राजस्व यज्ञ करने का योग्यता तो सब राजा का नहीं होता है। जो विशेष शक्तिशाली, गुणवान, धर्मज्ञ और विचारवान है, जिनमें सारे सद्गुणों का विकास है, वैसे राजा के लिए ही राजस्व यज्ञ का निर्देश दिया गया है। तो हमारे बारे में तो सब ऐसे ही कहते हैं, या तो डर के मारे कहते हैं, नहीं तो स्नेह के वश कहते हैं, नहीं तो श्रद्धा के मारे कहते हैं। बल्कि तुम तो इस सारे विचारों के ऊपर हो, तुम बताओ हमें ये करना चाहिए। तो कृष्ण ने तब युधिष्ठिर महाराज को सम्मति दिया, हाँ तुम ये राजस्व यज्ञ करो। बल्कि राजस्व यज्ञ करने के पहले जो शक्तिशाली जितने सारे राजाओं हैं उनको अपना वश में लाना चाहिए। विशेष रूप से जरासंध बहुत शक्तिशाली है और शिशुपाल भी जरासंध का सेनापति बन चुका बना है। ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली राजा हैं और जरासंध बहुत सारे राजाओं को परास्त करके बंदी कर लिया, बंदी करके अपना राज्य में रखा है। वो बाद में वो सब राजाओं को नरबलि देने का प्रयत्न कर रहा है। तो अगर जरासंध को तुम मार डालोगे तो जितने सारे राजा वहां बंदी हुए हुए हैं उसको तुम अगर मुक्त कर दोगे तो सारे राजाओं ने तुम्हारा साथ आ जाएगा, तो तुम्हारे लिए राजस्व यज्ञ करना तब आसान हो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि जरासंध आपके साथ शत्रुता करते हुए भी जिंदा है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये क्यों है, क्यों ऐसा हो? तब कृष्ण ने जरासंध के बारे में, जरासंध के जन्म के बारे में बताया कि एक राजा था, वो धार्मिक राजा था बृहद्रथ, और बृहद्रथ ने काशी राज का दो कन्या को, दो राजकुमारी का शादी किया था और उनका युवावस्था बीत जाने के पश्चात भी उसका कोई संतान नहीं हुआ, तो इसलिए उनका मन में बहुत खेद था। यद्यपि वो बहुत सारे यज्ञ किया, दान किया, उत्कृष्ट यज्ञ अनुष्ठान किया जिसके द्वारा पुत्र प्राप्ति होता है, फिर भी उसका कुछ कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक दिन उनको खबर मिला कि चंड कौशिक नाम के एक ऋषि वहां आकर बहुत सारे कठोर तपस्या करने के पश्चात भ्रमण करते हुए ये नगरी के किनारे में एक वृक्ष के नीचे विराज कर गए। तो ये सुनकर राजा ने उस ऋषि के पास गए चंड कौशिक और जाकर उसके बहुत सेवा किया। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर चंड कौशिक ने बोला, तुम क्या मांगते हो? तो राजा बृहद्रथ ने बताया कि मेरा केवल एक ही अभिलाषा है कि मैं एक पुत्र चाहता हूं। तो चंड कौशिक तो ध्यान में बैठ गए और कुछ देर बाद जिस वृक्ष में उन्होंने बैठे थे वो एक आम का वृक्ष था, उस वृक्ष से एक आम गिरकर उनका गोद में पड़ गया। तब वो आम लेकर राजा को दिया और बोला, तुम ये आम अपना रानी को दो, तब उनका पुत्र होगा। क्योंकि बृहद्रथ का ये था, वादा किया था कि दो राजकुमारी के प्रति उनका मनोभाव समान रहेगा, दो रानियों के प्रति उनका मनोभाव समान रहेगा, इसलिए उन्होंने उस आम उन दोनों को दे दिया। तो उन्होंने वो आम काटकर वो आम काटकर दो रानी आधा आधा आम को खाए और कुछ दिन बाद दोनों रानी ही गर्भवती हो गई। बल्कि जब उनका संतान निकला पेट से तो देखा कि दो आधा आधा शरीर ये निकला है वहां से, तो तब वो देखा ये तो ये है, उसमें तो कोई प्राण नहीं है, तो ये सोचकर वो नगरी के बाहर उसको फेंक दिया। तो उस रात को वहां जरा नाम का एक राक्षसी घूमते घूमते वो जो बच्चा का जो शरीर आधा था उसको लिया, देख लिया, देखकर वो ऐसे अचानक दोनों उठाकर ऐसे दोनों को जोड़ दिया क्या अच्छा, और तभी वो बच्चा प्राण पाकर जीवित होकर रोने लगे। तो जरा ने सोचा कि राजा का कोई पुत्र नहीं है तो मैं उनके राज्य में रहता हूं तो राजा के लिए मेरा कुछ करना चाहिए, तो ये बच्चा मैं राजा को दे दूं। तो जरा आकर बृहद्रथ के पास आकर वो बच्चा दिया और बोला ये तुम्हारे लिए मैं लाया हूं। और बृहद्रथ भी देखा कि जो आधा शरीर जो बच्चा का फेंक दिया गया था वही अब युक्त होकर जीवित होकर आ गया। तो क्योंकि जरा ने उसको संधि करके एकत्रित करके उसको जीवन उसमें जीवन लाया था, इसलिए बच्चा को नाम रखा गया जरासन। और कुछ दिन के पश्चात चंडकौशिक आकर उस बच्चे के बहुत प्रशंसा की और बहुत आशीर्वाद दिया कि ये बच्चा बहुत ही वीर होगा, कोई भी इसको युद्ध में हराना नहीं सकेगा, देवता और दानव एक साथ भी होकर उसको हराना नहीं सकेंगे, और ये बहुत सारे उसको आशीर्वाद किए। तो इसके प्रभाव से जरासंध बहुत ही बलवान हो गया और जब जरासंध राज को राज सिंहासन देकर बृहद्रथ अपने पत्नियों के साथ वन में चले गए वानप्रस्थ लेकर। और ये है जरासंध का इतिहास। जरासंध ने सारे राजाओं को बहुत सारे राजाओं को ये किया था बंदी करके, वो रुद्र के पास बलि देने के लिए आयोजन कर रहा था। और जरासंध के साथ कृष्ण का भी विद्वेष था क्योंकि जरासंध का कन्या दो कन्या था कंस का पत्नी, तो कृष्ण ने जब कंस को मारा तो जरासंध ने कृष्ण के प्रति बहुत विद्वेष भाव पोषण कर लिया और बहुत बार द्वारका आक्रमण भी किया और एक एक बार पराजित होकर 17 बार जरासंध ने कृष्ण पर आक्रमण किया था मथुरापुर। और जरासंध के कारण ही कृष्ण ने अपना राजधानी मथुरापुरी से द्वारका ले गए थे समुद्र के बीच ताकि जरासंध वहां उपद्रव न कर पाए। तो कृष्ण ने बताया कि वैसे जरासंध को ऐसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा रणभूमि, उनके केवल बाहुबल के द्वारा ही परास्त हो सकता है। और जरासंध का एक बर भी था, देवताओं से जरासंध का बर मिला कि जदुवंशियों के द्वारा जरासंध का मृत्यु नहीं होगा, तो इसलिए कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि जरासंध के साथ हम वैसे युद्ध नहीं करेंगे, परंतु उनके साथ द्वंद युद्ध करेंगे, मतलब कुश्ती करेंगे। कुश्ती करके ही केवल जरासंध को हम मार सकते हैं। और भीम और अर्जुन को साथ लेकर मैं जाऊंगा मगध में, वहां जरासंध के साथ लड़ाई होगा भीम का, और तत्पश्चात ही केवल जरासंध का मृत्यु। तो भीम और अर्जुन को साथ लेकर कृष्ण ने गया मगध, और वहां जाकर अपना राजवेश उतारकर ब्राह्मण के वेश धारण किया। धारण करके गुप्त द्वार से, मतलब सिंह द्वार से नहीं, पीछे का जो दरवाजा है उस दरवाजे के माध्यम वहां प्रवेश किया नगरी में, और प्रवेश करके जरासंध के पास गया। और जरासंध उन ब्राह्मण को देखते हुए ही, जरासंध बहुत वो वैसे ब्राह्मण के प्रति श्रद्धाशील था, ब्राह्मण को देखकर वो खड़ा हो गया और बताया कि आपको देख के तो लगता है आपका वेश तो है ब्राह्मण का, बल्कि आपका आचरण तो ब्राह्मण जैसा नहीं है, और आपका शरीर भी जैसे ब्राह्मण जैसा नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि आपका हाथ में बाण चलाने के लिए, धनुष बाण चलाने के लिए उसका चिन्ह भी रह गया है, और आपका भुजाएं बहुत ही सबल हैं, आपका कंधे चौड़ा है, कमर क्षीण है, तो ये जो आपका शरीर मैं देखता हूं ये तो ब्राह्मण का शरीर नहीं है। परंतु और ये भी बताइए, आप सामने की दरवाजा सिंह द्वार से प्रवेश ना करके क्यों आप गुप्त द्वार से, पीछे से आप क्यों आए? क्योंकि वहां से तो शत्रु आते हैं, आप क्यों आए हैं? तो कृष्ण ने बताया कि मैं सामने से जो आते हैं मित्र आते हैं, बल्कि हम आपका मित्र के रूप में नहीं आया, आपका शत्रु के रूप में आए हैं, इसलिए हम पीछे के दरवाजे से आए हैं। तो जरासंध ने पूछा, आपके साथ तो मेरा कोई शत्रुता का कारण मुझे तो याद नहीं आ रहा है, तो क्यों आप हमें कह रहे हैं कि आप शत्रु के रूप में हमें दर्शन कर रहे हैं? तो कृष्ण ने बताया, यद्यपि वैसे तुम्हारे साथ मेरा कोई शत्रुता नहीं था, बल्कि तुम जो राजाओं को बंदी करके उनको बलि देने के लिए तैयार कर रहे हो, इसलिए हम जो समाज के धर्म को रक्षा करने के करते हैं, इसलिए तुमको हत्या करने का तय किया। तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है कि ये क्रूर कर्म अपराध नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं को हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, तुम दुखियों की सहायता करते हैं। बात यह है कि हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की वृद्धि के लिए तुम्हारा वध का निश्चय करके यहां आए हैं। तुम जो इस भूमन में फूले रहते हैं हो कि मेरे सामने कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के बक्ष स्थल पर तुमसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिए तुम्हारे ये घमंड असह्य है। अपने बार बार बालों को सामने ये घमंड छोड़ दो। ये बराबर बालों के सामने ये घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र मंत्री और सेना के साथ जमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे अनेक निश्चय उद्देश्य निश्चय ही युद्ध है। हमारे आने का उद्देश्य निश्चय युद्ध ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हूं, मैं हूं वासुदेव का पुत्र कृष्ण। ये दोनों है पांडव नंदन, भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं, तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। तो जरासंध भी बहुत वीर थे, वो बताया वासुदेव मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूं, तनिक दिखाओ तो सही वो कौन है जिसे मैंने जीता ना हो, जो मेरा सामना कर सकते हो, जो मेरा सामना कर सकता हो। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो, मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूं, चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। ये कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों का हाथों से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं न मारकर भीमसेन को हाथों मरवाने का निश्चय किया। तो इसके पश्चात दंड युद्ध कुश्ती हुआ। तो जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने। ब्राह्मण ने आकर स्वस्ति वचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा लिया और बालों को बांटता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा भीमसेन आओ, बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी जश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन करा। जरासंध से भिड़ने के लिए आखाड़ा में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे, दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं के ही शस्त्र बनाया था। ये जो लड़ाई हो रहा था उसमें उनका भुजाएं ही अस्त्र था। तो वैसे 13 दिन तक लड़ाई हुआ, दिन रात लड़ाई हुआ, खाना पीना सोना बस कुछ भी नहीं हुआ। लगातार 13 दिन तक जो लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। और 14वें दिन रात के समय जरासंध थक कर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा, वीर भीमसेन थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं है। अरे अधिक जोर लगाने पर तो वो मर ही जाएगा, इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा न दबाकर केवल बाहु युद्ध करते रहो। कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन जरासंध को स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। ऐसे कृष्ण ने भीमसेन को इंगित दिया कि आप चलो इसको मार डालो, इसका हाल खराब हो गया, ढीला पड़ गया। तो और भीमसेन कैसे इसको ऐसे बाहु युद्ध से लड़ाई करके मारता था, याद है? वो उसको पकड़कर घुमाता था, वो जरासंध को लेकर भी वैसा ही किया पहले। भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों को चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे दो खंड में चीर डाला। तो जरासंध का, इसलिए जरासंध का मृत्यु नहीं होता था, उसका ऐसे दो अंग का युक्त होने के कारण वो दोनों अंग को अलग करने के द्वारा ही केवल उसका मृत्यु हो सकता था। तो कृष्ण ने इसका इंगित भीमसेन को दिया था और इसलिए भीमसेन, उसका वर्णन यह नहीं है, कृष्ण ने एक घास उठाकर उसको दो काई करके फाड़ दिया। तब अर्ध भीम को पता चला क्या करना चाहिए। तो वैसे जरासंध को एक पैर के ऊपर अपना पैर रखकर और ऐसे खींचा और जरासंध का शरीर अलग हो गया और उसका मृत्यु हो गया। तो इसके पश्चात कृष्ण और अर्जुन, भीम और अर्जुन को लेकर सारे राजाओं को मुक्त कर दिया और दोनों सब राजाओं ने बंदी जो बंदी हुए थे वो सब भीमसेन का और कृष्ण अर्जुन का बहुत ही तारीफ करते रहे और उनको आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए। अपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा न रही, उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण को रत्न राशि को भेंट देने लगे। भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित के आगे कर उन अनेक रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभय दान कर देकर भेद स्वीकार किया। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वही सहदेव को अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गए। यद्यपि जरासंध कृष्ण का शत्रु के रूप में आचरण कर रहा था, बल्कि उनका पुत्र कृष्ण का भक्त बन गया और पांडवों को सहयोग देने लगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी ये सहदेव पांडव पक्ष अवलंबन करके लड़ाई किया। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे।